एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद पहली नजर में थोड़ा मुश्किल लगे, अनुप्रयुक्त गणित यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स। पर मेरा यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबरों और समीकरणों का खेल नहीं है।
बिल्कुल सही कहा।
और इस दिलचस्प सफर में हमारे मार्गदर्शक होंगे एलन गोरियाली। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गणितीय मॉडलिंग के प्रोफेसर हैं वो।
हाँ।
हम उनकी दो किताबों अप्लाइड मैथमेटिक्स ब्रिजिंग थियरी एंड रियलिटी और अप्लाइड मैथमेटिक्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के मुख्य विचारों पर चर्चा करेंगे।
अच्छा।
मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे गणित, जो अक्सर हमें कागज पर अमूर्त सा लगता है,
बहुत एब्स्ट्रैक्ट,
असल में हमारी दुनिया की नब्ज पकड़ सकता है और उसे आकार भी दे सकता है।
और ये विषय आज इतना जरूरी क्यों है? मतलब क्यों बात कर रहे हैं हम इस पे?
देखिए, सोचिए जरा, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो, मौसम का पूर्वानुमान हो, बीमारियों का फैलना हो, शेयर बाजार का उतार चढ़ाव हो, यहां तक कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं गणितीय मॉडलिंग काम कर रही है।
अच्छा।
ये हमारी जिंदगी को लगातार प्रभावित कर रही है, भले ही हमें इसका सीधा सीधा एहसास ना हो।
हाँ, ये बात तो है।
तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए शुरुआत करते हैं एलन गोरियाली से। जैसा कि बताया, वो ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर है।
हाँ।
पर उनकी पहचान सिर्फ एक गणितज्ञ तक सीमित नहीं है, उनकी असली खासियत क्या है?
हाँ, यही बात उन्हें बहुत खास बनाती है। उनका काम ना किसी एक दायरे में बंधा नहीं है।
अच्छा।
वो गणित को यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स, जीव विज्ञान बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के साथ जोड़ते हैं।
और ये देखना कमाल का है कि उन्होंने गणितीय सिद्धांतों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है। पौधों की पत्तियों का मुड़ना, समुद्री सीपियों का बनना,
सच में
सीपियों का बनना
ना।
और कैंसर ट्यूमर कैसे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि हमारे दिमाग की जो सिलवटें होती हैं वो कैसे बनती हैं, और डीएनए की वो उलझी हुई संरचना, उसे समझने तक में।
गजब। मतलब वो सिर्फ थियोरी में ही उलझे रहते?
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि असल दुनिया की, खासकर जीवित चीजों की जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए गणित का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने सुना है कि वो मुश्किल गणितीय आइडियाज को भी काफी आसान भाषा में समझा सकते हैं।
हाँ, ये उनकी खूबी है जो हमारे आज की चर्चा के लिए बहुत अच्छा है।
तो गोरियाली इस अनुप्रयुक्त गणित को देखते कैसे हैं? उनका क्या नजरिया है?
उनका कहना है कि ये सिर्फ कुछ नियमों या फॉर्मूलों का कलेक्शन नहीं है। ये दरअसल एक रचनात्मक सोच है, दुनिया को समझने की एक प्रक्रिया।
प्रक्रिया?
कैसी प्रक्रिया? जैसे कोई पुल दो किनारों को जोड़ता है।
हाँ।
वैसे ही अनुप्रयुक्त गणित सिद्धांतों की दुनिया और हमारी वास्तविक उलझी हुई दुनिया के बीच एक पुल बनाता है।
अच्छा, ये पुल बनाने की प्रक्रिया कैसी है? गोरियाली कहते हैं इसमें तीन कदम हैं, है ना?
हाँ, तीन कदम वाली यात्रा कह सकते हैं। पहला कदम है मॉडलिंग।
मॉडलिंग, ये क्या चीज है?
अच्छा सवाल है। देखिए, क्या हम असल दुनिया की किसी चीज को सीधे सीधे पूरी तरह समझ सकते हैं?
शायद नहीं, बहुत जटिल होती हैं चीजें।
बिल्कुल। तो मॉडलिंग का मतलब है उस जटिल चीज का एक सरल गणितीय नक्शा बनाना।
हाँ, जैसे शहर का नक्शा बनाते समय हम हर गली हर पेड़ नहीं दिखाते।
सही।
सिर्फ जरूरी सड़कें और लैंडमार्क दिखाते हैं।
बिल्कुल। तो मॉडलिंग में हम समस्या के सबसे अहम पहलुओं को चुनते हैं और उन्हें गणित की भाषा में लिखते हैं। इसमें बहुत सोच समझ कर ये तय करना पड़ता है कि क्या जरूरी है और क्या नजरअंदाज किया जा सकता है।
अच्छा, समझ गया। तो पहला कदम हुआ समस्या का गणितीय नक्शा बनाना, फिर दूसरा कदम?
दूसरा कदम है विश्लेषण और गणना, एनालिसिस एंड कॉम्प्यूटेशन।
ओके।
अब जब हमारे पास वो गणितीय नक्शा यानी मॉडल है, तो हम गणित के औजारों का इस्तेमाल करके उसे हल करते हैं।
अच्छा।
यहाँ पर समीकरण सुलझाना, गणना करना, कंप्यूटर सिमुलेशन चलाना, ये सब आता है इसमें।
ठीक है, और तीसरा कदम? हल मिल गया तो काम खत्म?
नहीं, यही पर असली समझदारी दिखानी होती है। तीसरा कदम है व्याख्या और सत्यापन, इंटरप्रिटेशन एंड वैलिडेशन।
व्याख्या और सत्यापन मतलब?
मतलब गणित से जो जवाब मिला उसे वापस असल दुनिया के समस्या के संदर्भ में समझना होता है।
हाँ।
क्या ये जवाब वाकई में मतलब रखता है? क्या ये हमारी असल दुनिया की ऑब्जर्वेशन से मेल खाता है?
और अगर नहीं खाता तो?
तो हमें वापस जाकर अपने मॉडल को सुधारना पड़ता है। ये एक चक्कर के तरह है जो बार बार दोहराया जा सकता है।
अच्छा, तो ये मॉडलिंग, विश्लेषण और व्याख्या का चक्र ही वो पुल है जो गणित की अमूर्त दुनिया को हमारी ठोस दुनिया से जोड़ता है।
हाँ,
इसी से पता चलता है कि कैसे गणित ग्रहों की चाल से लेकर बीमारियों के फैलने और शेयर बाजार तक को समझने में हमारी मदद कर सकता है।
है ना कमाल की बात, कैसे कुछ समीकरण इतनी अलग अलग चीजों पर लागू हो जाते हैं।
बिल्कुल, और इस पूरी प्रक्रिया में रचनात्मकता का बहुत बड़ा हाथ है।
हाँ, गुरेली इस पर बहुत जोर देते हैं।
वो कहते हैं कि मॉडलिंग एक कला भी है। किसी एक समस्या के लिए कोई एक सही मॉडल नहीं होता।
सही,
अलग अलग सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग तरह के उपयोगी मॉडल बनाए जा सकते हैं।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि एक गेंद फेंकने पर कितनी दूर जाएगी, तो शायद हवा के असर को नजरअंदाज कर सकते हैं।
ठीक है,
लेकिन अगर आप क्रिकेट में स्विंग बॉलिंग को समझना चाहते हैं,
हाँ,
तो हवा का असर ही सबसे जरूरी चीज बन जाता है।
हाँ,
तो मॉडल उद्देश्य पर निर्भर करता है।
और ये मॉडल भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं ना, कुछ शायद बिल्कुल पक्का नतीजा बताते हैं।
हाँ,
और कुछ में थोड़ी अनिश्चितता होती है।
हाँ, बिल्कुल, कुछ मॉडल नियतात्मक डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, जहां अगर आप शुरुआती शर्तें जानते हैं तो नतीजा पक्का होता है। जैसे ग्रहों की गति, न्यूटन के नियम आपको ठीक ठीक बता देंगे कि ग्रह कहाँ होगा।
लेकिन कई असल दुनिया की चीजें ऐसी नहीं होती।
जैसे उनमें स्टोकेस्टिक तत्व होता है, यानी थोड़ी बहुत रैंडमनेस या अनिश्चितता, जैसे मौसम का पूर्वानुमान या शेयर बाजार का हाल।
हाँ, वो तो रोज देखते हैं।
इनमें हम सिर्फ संभावनाएं बता सकते हैं, पक्का नतीजा नहीं।
तो इन मॉडल्स को बनाने और हल करने के लिए गणितज्ञों के पास क्या खास औजार होते हैं, मतलब क्या टूल्स इस्तेमाल होते हैं?
कई हैं। एक बहुत ही शक्तिशाली पर सुनने में सरल लगने वाला औजार है आयामी विश्लेषण।
आयामी विश्लेषण, ये क्या है?
इसका मूल सिद्धांत बस इतना है कि किसी भी भौतिक समीकरण के दोनों तरफ की इकाइयां, मतलब डायमेंशंस, एक जैसी होनी चाहिए। आप लंबाई मीटर में समय सेकंड नहीं जोड़ सकते।
हाँ, ये तो जाहिर है।
सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर ये बड़े बड़े सिद्धांतों की जांच करने और नए रिश्ते खोजने में मदद करता है।
ये दिलचस्प है, मतलब सिर्फ यूनिट्स को देखकर कुछ पता चल सकता है।
हाँ, इसी से स्केलिंग नियम निकलते हैं।
स्केलिंग नियम
ये बताते हैं कि जब किसी चीज का आकार बदलता है तो उसके गुण कैसे बदलते हैं। एक मशहूर उदाहरण है स्क्वायर क्यूब नियम।
स्क्वायर क्यूब नियम
ये कहता है कि जैसे जैसे कोई चीज बड़ी होती है, उसका वजन, मतलब आयतन, लंबाई के घन के अनुपात में बढ़ता है।
ठीक है,
लेकिन उसकी सतह का क्षेत्रफल सिर्फ लंबाई के वर्ग के अनुपात में बढ़ता है।
अच्छा, इसका कोई मजेदार नतीजा?
बिल्कुल, यही वजह है कि फिल्मों वाले वो विशालकाय कीड़े या जानवर असलियत में मुमकिन नहीं है।
अरे हाँ, क्यों?
अगर आप एक चींटी को हाथी के आकार का बना दें तो उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसके पैर उसे संभाल ही नहीं पाएंगे, वो अपने ही वजन से ढह जाएगी।
हाँ हाँ, कमाल की बात है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि गणित का इससे लेना देना होगा।
है ना, और भी महत्वपूर्ण औजार हैं।
जैसे?
एक और बहुत जरूरी औजार है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस।
ओह, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये तो नाम सुना है।
हाँ, इन्हें बदलाव की भाषा कहा जा सकता है। ये बताते हैं कि कोई सिस्टम समय के साथ या जगह के साथ कैसे बदलता है।
अच्छा,
सोचिए आप एक चलती हुई कार की फिल्म बना रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये ट्रैक कर रहे हैं कि कार कब किस पॉइंट से गुजरी, तो ये एक तरह से साधारण अवकल समीकरण ओडी जैसा है, जो सिर्फ समय पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप कार के इंजन का हीट मैप देख रहे हैं कि तापमान उसकी सतह पर कहां और कब कितना है,
अच्छा,
तो ये आंशिक अवकल समीकरण पीडीई जैसा है, जो जगह और समय दोनों पर निर्भर करता है।
इनका इस्तेमाल फिजिक्स, इंजीनियरिंग से लेकर जीव विज्ञान तक हर जगह होता है।
लेकिन क्या असल दुनिया की समस्याएं इतनी सीधी होती हैं कि इन समीकरणों को कागज कलम से हल किया जा सके? मुझे तो लगता है ज्यादातर चीजें बहुत उलझी हुई होती होंगी।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ज्यादातर होती हैं, और यहीं पर कंप्यूटर का जादू आता है।
कंप्यूटर?
हाँ, पहले गणितज्ञ ज्यादातर ऐसे मॉडल बनाते थे जिनके सटीक विश्लेषणात्मक हल निकाले जा सके, लेकिन ज्यादातर असली समस्याएं बहुत ज्यादा जटिल होती हैं। कंप्यूटर ने हमें संख्यात्मक तरीके, न्यूमेरिकल मेथड्स और सिमुलेशंस का इस्तेमाल करने की ताकत दी है।
ये कैसे काम करते हैं? कंप्यूटर समस्या को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर टुकड़े के लिए अनुमानित हल निकालता है, और फिर उन्हें जोड़कर पूरी समस्या का एक लगभग सही हल बता देता है।
इसके कुछ उदाहरण देंगे रोजमर्रा की जिंदगी से।
सबसे आम उदाहरण है मौसम का पूर्वानुमान।
हाँ बिल्कुल,
इतने सारे फैक्टर होते हैं, हवा, तापमान, दबाव, नमी, कि कोई सटीक फॉर्मूला बनाना नामुमकिन है। कंप्यूटर बड़े बड़े सिमुलेशन चलाकर अगले कुछ दिनों के मौसम का अंदाजा लगाते हैं।
अच्छा,
इसी तरह हवाई जहाज या कार डिजाइन करते समय इंजीनियर कंप्यूटर पर ही हवा के प्रवाह का सिमुलेशन चलाते हैं, जिसे CFD कहते हैं, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। मानो एक वर्चुअल विंड टनल में टेस्ट कर रहे हों। इससे पता चलता है कि डिजाइन कितना एरोडायनामिक है। ये सब कंप्यूटर की गणना शक्ति के बिना संभव नहीं था।
तो पारंपरिक रूप से गणित ने फिजिक्स और इंजीनियरिंग में तो क्रांति ला दी, न्यूटन के नियम, ग्रहों की चाल, पुलों का डिजाइन वगैरह, लेकिन अब इसका दायरा कहाँ तक फैल रहा है?
अब ये नए और रोमांचक क्षेत्रों में धूम मचा रहा है। गणितीय जीव विज्ञान, मैथमेटिकल बायोलॉजी, एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है।
जीव विज्ञान में गणित कैसे?
सोचिए महामारियां कैसे फैलती हैं।
हाँ।
इसके लिए SIR मॉडल इस्तेमाल होते हैं, ससेप्टेबल इन्फेक्टेड रिकवर्ड। हम सबने हाल के वर्षों में कर्व को समतल करना, फ्लैटनिंग द कर्व सुना है।
हाँ, बिल्कुल सुना है।
ये विचार इसी तरह के गणितीय मॉडल से आया था जिसने हमें समझाया कि लॉकडाउन क्यों जरूरी हो सकता है।
अच्छा, तो ये सब गणितीय मॉडल पर आधारित था।
हाँ, काफी हद तक। और जीवों की दुनिया में भी बहुत कुछ है।
जैसे?
जैसे शिकारी और शिकार की आबादी कैसे घटती बढ़ती है, इसे समझाने के लिए लॉट का वोल्टेरा समीकरण जैसे क्लासिक मॉडल हैं। या फिर ये समझना कि जीवों में पैटर्न कैसे बनते हैं, जैसे जेब्रा की धारियां या तेंदुए के धब्बे।
हाँ, ये कैसे होता है?
महान गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने दिखाया था कि कैसे साधारण गणितीय समीकरणों से ऐसे जटिल पैटर्न अपने आप उभर सकते हैं। इसे रूपजनन, मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं।
ये तो वाकई अद्भुत है, और विज्ञान के बाहर?
हाँ, वित्त में ब्लैक शोल्स मॉडल का इस्तेमाल ऑप्शन की कीमतें तय करने के लिए होता है, जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। सामाजिक विज्ञान में नेटवर्क थ्योरी का इस्तेमाल ये समझने के लिए हो रहा है कि सोशल नेटवर्क कैसे काम करते हैं, अफवाहें कैसे फैलती हैं, या इंटरनेट का ढांचा कैसा है। तो इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है।
तो इस सारी बातचीत से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहला तो मुझे यही लगता है कि गणित वाकई हकीकत को बयान करने वाली एक यूनिवर्सल भाषा है।
हाँ, बिल्कुल।
ये सोचना ही अजीब लगता है कि वही गणितीय सिद्धांत जो ग्रहों की चाल समझाता है, वही किसी बीमारी के फैलने या शेयर बाजार के पैटर्न में भी दिख सकता है।
सही कहा। दूसरी अहम बात यह है कि गणितीय मॉडलिंग सिर्फ विज्ञान नहीं, एक कला भी है।
कला? कैसे?
इसमें तकनीकी हुनर के साथ साथ रचनात्मकता, सहज ज्ञान और चीजों को सरल बनाने की काबिलियत भी चाहिए। और ये कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है,
जिसमें मॉडल को परखा जाता है, सुधारा जाता है।
बिल्कुल। यहाँ जॉर्ज बॉक्स का वो मशहूर कथन याद आता है जिसे गोरी अली अक्सर इस्तेमाल करते हैं, सारे मॉडल गलत होते हैं पर कुछ उपयोगी होते हैं।
हाँ, ये मैंने सुना है। मतलब कोई भी मॉडल हकीकत की 100% नकल नहीं कर सकता।
हाँ, वो हमेशा एक सरलीकरण होता है, लेकिन फिर भी अगर हम उनकी सीमारे जानते हैं तो वो दुनिया को समझने और भविष्यवाणी करने में बहुत काम के हो सकते हैं।
हाँ, ये उपयोगी होना शायद सबसे जरूरी है। और तीसरी बात जो मेरे मन में आ रही है वो है गणित की अनुचित प्रभावशीलता।
हाँ, द अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ मैथमेटिक्स, यूजीन विग्नर का मशहूर लेख।
हाँ, मतलब ये गणित काम क्यों करता है? क्या ये कोई जादू है?
गोरियली इसे जादू नहीं मानते। वो समझाते हैं कि ये मॉडलिंग और सत्यापन की सख्त प्रक्रिया का नतीजा है।
अच्छा।
जो मॉडल हकीकत से मेल नहीं खाते उन्हें नकार दिया जाता है, जो बचते हैं वो इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो दुनिया के बारे में कुछ जरूरी सच्चाई पकड़ते हैं। लेकिन फिर भी ये गहरा रिश्ता कि दुनिया गणितीय नियमों का इतनी सटीकता से पालन क्यों करती है, थोड़ा रहस्यमयी तो है।
बिल्कुल। चौथी बात शायद ये है कि अनुप्रयुक्त गणित का दायरा लगातार फैल रहा है।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है।
ये अब सिर्फ फिजिक्स इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं, बल्कि जीव विज्ञान, वित्त, समाजशास्त्र, डेटा साइंस जैसे नए मैदानों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एक जिंदा, विकसित होता हुआ क्षेत्र है।
और शायद सबसे जरूरी बात जिसे गोरियली भी रेखांकित करते हैं, अनुप्रयुक्त गणित सिर्फ तकनीकों का पिटारा नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका, एक मानसिकता है।
एक मानसिकता?
हाँ। ये समस्याओं को देखना, उन्हें छोटे हिस्सों में तोड़ना, उनके मुख्य कारणों को पहचानना और उनके बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने का एक अनुशासित फिर भी रचनात्मक तरीका है।
अच्छा।
गोरियली का एक और विचार यहाँ सटीक बैठता है। अनुप्रयुक्त गणित में असली कला समीकरण को हल करने में नहीं बल्कि उसे बनाने में है, मतलब मॉडल तैयार करने में।
ये मानसिकता वाली बात मुझे दिलचस्प लगी। क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस सोच का इस्तेमाल कर सकते हैं?
बिल्कुल।
जैसे मान लीजिए शहर में ट्रैफिक जैम की समस्या, क्या उससे गणितीय नजरिए से देखने से कोई फायदा हो सकता है?
क्यों नहीं, गाड़ियों का प्रवाह, सड़क की क्षमता, सिग्नल की टाइमिंग, इन सबको मॉडल करके बेहतर हल सोचे जा सकते हैं।
या क्रिकेट में ही देख लीजिए।
हाँ बिल्कुल, किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए कितने सारे सांख्यिकी मॉडल इस्तेमाल होते हैं।
सही,
ये मानसिकता हमें सिखाती है कि जटिल चीजों से घबराने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश कैसे करें।
हाँ,
एक और रूपक जो गौरियली इस्तेमाल करते हैं वो है एक गणितीय मॉडल एक अनुवाद की तरह है।
अनुवाद,
और हर अनुवाद की तरह इसमें कुछ खोता भी है और कुछ साफ भी होता है। ये मॉडल की ताकत और सीमा दोनों को खूबसूरती से बताता है।
वाह, ये बहुत अच्छा रूपक है। तो ये सब सुनने में बहुत ज्ञानवर्धक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी में इस ज्ञान का क्या करे? क्या इसके कुछ व्यवहारिक फायदे भी हैं?
हाँ कई हैं। पेशेवर जिंदगी में ये समस्या समाधान का एक व्यवस्थित तरीका सिखाता है।
कैसे?
चाहे आप बिजनेस प्लान बना रहे हों, बजट तय कर रहे हों, या किसी प्रोजेक्ट का जोखिम आंक रहे हों, मॉडलिंग वाली सोच यानी समस्या को तोड़ना, मुख्य कारक पहचानना, अनुमान लगाना, विकल्पों का विश्लेषण करना, ये बहुत काम आ सकती है।
और निजी जिंदगी में?
निजी वित्त में सोचिए, घातीय वृद्धि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के सिद्धांत समझना निवेश और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितने जरूरी है।
हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है।
संभाव्यता की थोड़ी समझ हमें बीमा या लॉटरी जैसी चीजों के बारे में बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकती है।
स्वास्थ्य के बारे में क्या?
हमने महामारी के दौर में देखा कि बीमारियों के फैलाव को समझना कितना अहम है। गणितीय मॉडल हमें ये समझने में मदद करते हैं कि रोकथाम के उपाय कैसे काम करते हैं। इसके अलावा किसी इलाज की सफलता दर या मेडिकल टेस्ट के नतीजों का सही मतलब समझने में भी ये सोच काम आती है।
और हमारी टेक्नोलॉजी?
अरे वो तो अनुप्रयुक्त गणित से भरी पड़ी है। GPS कैसे हमारी लोकेशन इतनी सटीक बताता है? CT MRI स्कैन कैसे शरीर के अंदर की तस्वीरें बनाते हैं?
हाँ।
गूगल सर्च कैसे पलक झपकते सही नतीजे ढूंढ लाता है?
सही कहा।
इन सब के पीछे जटिल गणितीय मॉडल और एल्गोरिदम काम कर रहे हैं। हम रोज इनका इस्तेमाल करते हैं बिना ये जाने कि इनके पीछे कितना गणित छुपा है।
तो सबसे बड़ा फायदा शायद ये है कि ये हमें किसी भी उलझी हुई चीज को देखकर घबराने की बजाय उसे टुकड़ों में तोड़कर देखने, जरूरी बातों को पकड़ने और एक मोटा मोटा अनुमान लगाने की हिम्मत और तरीका देता है, जिसे बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कहते हैं।
बिल्कुल।
इस पूरी चर्चा में मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात ये रही कि अनुप्रयुक्त गणित कितना रचनात्मक हो सकता है।
हाँ मेरे लिए भी।
हम अक्सर गणित को बहुत सूखा और नियमों में बंधा हुआ विषय मानते हैं, लेकिन गौरियली दिखाते हैं कि ये असल में दुनिया को देखने और उसके बारे में नए कल्पनाशील तरीकों से सोचने का जरिया है। मॉडल बनाना खुद एक क्रिएटिव काम है।
और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि गणित वाकई दुनिया को समझने की एक भाषा है, और ये कोई मरी हुई भाषा नहीं बल्कि एक जीती जागती लगातार विकसित होती भाषा है, जो नए नए क्षेत्रों जैसे जीवन विज्ञान और समाज को अपने दायरे में समेट रही है। ये सिर्फ कुछ विशेषज्ञों की बपोती नहीं बल्कि एक मानसिकता है।
हाँ, सोचने का एक ढांचा है जिसे कोई भी अपनाकर अपनी समझ को बेहतर बना सकता है।
बिल्कुल।
तो श्रोताओं के लिए जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ,
अगली बार जब आप किसी जटिल प्रणाली का सामना करें, चाहे वो आपके शहर का ट्रैफिक हो, मौसम का बदलता मिजाज हो, ऑफिस की राजनीति हो या कोई सामाजिक ट्रेंड, तो क्या आप उसमें छिपे गणितीय पैटर्न या नियमों के बारे में सोच सकते हैं?
दिलचस्प सवाल है।
क्या उसे एक मॉडल के रूप में देखने से, भले ही वो बहुत सरल मॉडल हो, आपको कोई नई अंतर्दृष्टि, कोई नया नजरिया मिलता है?
जरूर सोचना चाहिए इस पर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।